हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 41, 42 एंड 43। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैश्चिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सूत देवी, प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 41, 42 और 43। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। कुंती महारानी कह रही हैं, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सुकेशुत्मे, स्नेह पाशं मिमं सिंधि दृढ़ं पाणुषु विश्वेषु, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशम इमं सिंधि दृढ़ पांडुषु विश्वेशु अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशम इमं सिंधि दृढ़ पांडुषु विश्वेशु चेक नंबर 42 त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहता दद्धा गंगे वोघम् उदन्वती त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहता दद्धा गंगे वोघम् उदन्वती त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकेत् रतिम् उद्वहता दद्धा गंगे वोगम् उदन्वती त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकेत् रतिम् उद्वहता दद्धा गंगे वोगम् उदन्वती श्लोक संख्या 43 श्री कृष्ण कृष्ण सख विश्वर्ष भावनितृ राजन्य वंश दहन नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरारति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते श्री कृष्ण कृष्ण सख विश्वर्ष भावनितृ राजन्य वंश दहन नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते श्री कृष्ण कृष्ण सख विश्वर्ष भावनितृ राजन्य वंश दहन नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते श्री कृष्ण कृष्ण सख विश्वर्ष भावनितृ श्री कृष्ण कृष्ण सख विश्वर्ष भावनितृ राजन्य वंश दहन नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते श्री कृष्ण कृष्ण सख विश्व ऋषभावनितृ राजन्य वंश दहन नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते। अत्यंत ही सुंदर कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। जैसा कि कल कुंती महारानी ने भगवान को कहा, नेयम् शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर तत्पदरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षते। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारा राज्य आपके चरण चिन्ह से अंकित है, जिसके कारण यह सुंदर लग रहा है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। इमे जनपदा श्रिद्धा सुपक्कौषधि विरुध वनाद्रि नद्युधन्वन्तो ये दन्ते तव वीक्षते। ये सारे नगर तथा सारे ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपत्ति से परिपूर्ण है। यह सब आपकी कृपा दृष्टि है। अर्थात कुंती महारानी भगवान को कह रही हैं कि भगवान आपकी कृपा से, क्योंकि आप जिधर भी कृपा दृष्टि करते, जिधर भी भगवान दृष्टिपात करते हैं, वृक्ष फलों से लद जाते हैं, समुद्र मोती उगलने लगते हैं, नदियों में उफान आने लगता है, सारी प्राकृत वस्तुएं, सारी प्रकृति आनंदित हो जाती है। आप को देखकर ही यह प्रकृति संतुष्ट है। आप जरा इन वनों की ओर देखिए, पर्वतों पर दृष्टिपात कीजिए। आप चले जाएंगे तो सबकी हालत खराब हो जाएगी, आपके बगैर कोई खुश नहीं रहेगा। इसलिए आप हमारी बात मान करके यहीं रह जाइए। इतने कहने के बाद प्रथा के मन में विचार आया, क्योंकि प्रथा भगवान की परम भक्तिनी थी, और भक्त का मतलब क्या होता है, प्रेमी का एक ही मतलब होता है, तत्सुख सुखित्वम। तो जिससे मेरा प्रीतम खुश है उसी से मुझे खुश रहना है। तो ऐसा विचार करने के बाद कृष्ण के सुख में ही हमारा सुख है। अब इस भाव को दर्शाते हुए वो सोचने लगी कि यदि कृष्ण को मैं रोकती हूँ तो यादवों का अहित होगा, वो विरह में मर रहे हैं। द्वारिका में सब जीव एक एक दिन एक एक पल गिन रहे होंगे कि अब कृष्ण आएंगे, अब कृष्ण आएंगे, सब कृष्ण की विरह में व्याकुल होंगे। जैसे हस्तिनापुर के लोग कृष्ण को देखे बगैर बेचैन हैं, उसी प्रकार द्वारिका के व्यक्ति भी तो भगवान से कितना स्नेह करते हैं। वो भगवान इतना समय जब यहाँ पर थे तो उनकी रानियां और सब यदुवंशी कितना भगवान को याद कर रहे होंगे, उनके लिए कितना हृदय के अंदर दुख हो रहा होगा कि कृष्ण हमारे साथ नहीं रह रहे हैं। तो सोचने लगी कि यदि रोकती हूँ तो हमारी नेहर के लोग, क्योंकि वासुदेव से भाई बहन का रिश्ता था तो वो नेहर के लोग थे, तो अगर यहाँ पर रोकती हूँ अपने पुत्रों के लिए और अपनी संतुष्टि के लिए तो मेरे नेहर के लोग दुखी होंगे, वो भी तो हमारे ही हैं, और यदि जाने देती हूँ उनके सुख के लिए तो मेरे पुत्र और स्वयं मैं दुखी हो रही हूँ। ये सोचकर कुंती व्याकुल होकर के अब दोनों परिवार के से स्नेह निवृत्ति के लिए प्रार्थना कर रही है कि कृष्ण अब ऐसी कृपा करो कि मेरा स्नेह ना मेरे नेहर में रहे और ना ही मेरे ससुराल में, क्योंकि ये सब देह के संबंधी है, और देह के संबंधी में भी अगर देखा जाए तो स्त्री का हृदय दो परिवार के बीच में बटा हुआ होता है, क्योंकि विवाह से पहले उनके माता पिता और उनके जो माता पिता के सारे संबंधी हैं, स्वाभाविक नेहर में स्नेह होता है, कन्या से सब प्रेम करते हैं और वो भी सब से प्रेम करती है, माँ की बहनें और है ना पिता की बहनें और दादी नानी हर किसी से प्रेम करती है। और एक दिन ऐसा आता है कि सब को छोड़कर उसे विवश होकर ससुराल जाना ही पड़ता है, और वहाँ पर भी हर किसी से उसे प्रेम करना पड़ता है, जैसे उसके ससुराल में देवर हो और नंदे हो, देवरानी हो, सास हो, सबको वही स्नेह देना पड़ता है। और अगर देखा जाए तो स्त्रियों में समर्पण की भावना, समर्पण की प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली होती है। अगर पुरुष को कभी कहा जाए कि तुम अपना घर बार छोड़कर किसी और के साथ संबंधित हो जाओ, किसी और के घर हो, तो उसके लिए अना का मसला हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन स्त्रियों के अंदर समर्पण की प्रवृत्ति ऑलरेडी होती है। अब क्योंकि समर्पण करना उसे आता है तो फिर उस समर्पण के प्रवृत्ति का खाली विषय बदलना है। अभी समर्पण क्या किसके लिए हो रहा है, देह के संबंध के लिए, लेकिन समर्पण का विषय कृष्ण अगर बना दिया जाए, समर्पण यदि कृष्ण के लिए किया जाए तो वास्तव में नारी समर्पण की मूर्ति होती है, क्योंकि भगवान ने अद्भुत हृदय बनाया है। पहले वो नेहर के केवल जो उसके नेहर हैं उनके हित की चिंता करती है, फिर ससुराल में आने के बाद वो नेहर के हित की भी चिंता करेगी और ससुराल के हित की भी चिंता करती है। तो आज कुंती महारानी सोचती है कि यदि मैं कृष्ण को यहाँ पर रोक दूंगी तो मेरे नेहर वाले दुखी होंगे, अगर जाने दूंगी तो यहाँ मेरे पुत्र और मैं दुखी होंगी। फिर अचानक उसके मन में आया कि मैं क्यों इतना स्नेह कर रही हूँ सबसे, मेरा केवल संबंध तो कृष्ण के साथ है, बाकी सारे तो मेरे देह के संबंध हैं। तो ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मैं क्यों इतनी आसक्ति का अनुभव कर रही हूँ। अब वो ऐसा सोचते हुए कृष्ण को कह रही है कि हे कृष्ण, हमारा जो स्नेह का बंधन है नेहर के लोगों में और ससुराल के लोगों में, उन दोनों के प्रति जो हमारा स्नेह का बंधन है ना, उसको काट दो, हमारा किसी से प्रेम ना प्रेम रही नहीं। इसे कुंती महारानी कहती हैं श्लोक नंबर 41 में, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम मम सिंधि दृढ़ पांडुषु ऋषिषु। स्नेह पाशम इमम सिंधि, जो स्नेह का पाश है, स्नेह की जो डोरी है जिसके अंदर मुझे मैं कैद हूँ, इमम सिंधि उसको आप काट दीजिए। स्नेह पाशम का मतलब होता है स्नेह बंधन को, इमम ये छिंदी यानी काट लीजिए, दृढ़म जो बहुत कड़ा हो गया है। मैं कभी उनके विषय में सोचती हूँ तो कभी इनके विषय में सोचती हूँ, पांडुषु विष्णुषु, कभी पांडवों के विषय में सोच रही होती हूँ, कभी विष्णुओं के लिए परेशान हो रही होती हूँ। तो कृपा करो आप मेरा ये स्नेह का बंधन काट दो। मानो कृष्ण पूछे, बुआ अगर किसी का किसी से प्रेम हो तो उसके स्नेह को मैं कैसे काट सकता हूँ, क्योंकि स्नेह का बंधन तो इतना सूक्ष्म होता है कि ऐसा नहीं होता है। जैसे स्नेह पाशा में मम छिंदी लिखा हुआ ना, अगर कोई पाश होता, कोई मोटी से मोटी रस्सी भी होती तो कोई कुल्हाड़ी लेकर या कोई भी तरीके से भगवान काट लेते। वो कृष्ण ऐसे कुंती महारानी को कह रहे हैं कि भले ही यह बंधन बहुत दृढ़ है परंतु यह तो कितना सूक्ष्म है। प्रेम तो हृदय का हृदय से होता है, बीच में कोई रस्सी तो दिख रही नहीं है, फिर मैं कैसे काटूं इस रस्सी को, इस स्नेह पे पाश को मैं कैसे काटूं। तो फिर कुंती महारानी ने पहली लाइन में जो भगवान को कहे ना शब्द, उससे भगवान को वो कह रही है अथ विश्वेश विश्वात् विश्व एश। विश्व एश का मतलब है ये ब्रह्मांड के स्वामी, इस विश्व के ईश्वर आप ही हो, ये विश्व आपके हाथ में है। किसी को किसी से मिला देना, फिर किसी को उससे स्नेह कराना, फिर उससे अलग कर देना, सब कुछ आपके हाथ में है, आप सबकी हृदय में रहते हो। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम, तुम ही मति देते हो, तुम ही स्मृति देते हो, तुम ही ज्ञान देते हो और तुम ही बुला देते हो, तो तुम सब कुछ कर सकते हो। आप ऐसा करो कि हमारे चित्त को ऐसा बना दो कि इसमें किसी के लिए भी प्रेम ना रहे, ना यादवों के लिए और ना ही पांडवों के लिए, क्योंकि इस संसार में जिसके जिससे भी प्रेम करते हैं तो उस प्रेम के कारण हमें दुख ही मिलता है। कभी मैं रोती हूँ अपने भाई वसुदेव के लिए, पहले रोती थी अपनी भाभी देवकी के लिए, रोती थी अपने नेहर के लोगों के लिए, और फिर पूरी जिंदगी मैंने अपने पुत्रों के प्रेम में रोया है, मैं हमेशा से रोती आई हूँ। हालांकि अगर देखा जाए तो मुझे स्वतः मेरे शरीर पे कोई कष्ट नहीं होता, मैं तो राजमहल में रहती, लेकिन फिर भी अपने पुत्रों के लिए, अपने नेहर के लोगों के लिए सदैव मुझे दुखी होना पड़ता। ये संसार का प्रेम के लिए किसके साथ भी हो तो उसके कारण हमें कष्ट मिलता है। तो आप ऐसा करो, स्नेह पाशम में मम सिंधि, आप ये स्नेह का पाश ही काट लो। तो भगवान यह पूछे कि ठीक है, मैं विश्वेश हूँ लेकिन मैं स्नेह का, मैं ईश्वर हूँ भले इस पूरी ब्रह्मांड का, लेकिन स्नेह पांच तो हृदय का होता है, फिर मैं हृदय से स्नेह को कैसे खत्म कर सकता हूँ। तब कुंती महारानी कहती हैं, अथ विश्वेश विश्वात्मन, खाली आप इस ब्रह्मांड के स्वामी नहीं हो, आप इस ब्रह्मांड के समस्त वस्तुओं की आत्मा हो, अर्थात समस्त जीवों के हृदय में तो आप ही वास करते हैं। आप विश्व आत्मा, आत्मा का मतलब होता है अंतर्यामी, यानी कि जो अंदर में रहता है। जैसे भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ। जैसे अब इस संसार में हम देखें कि जो ड्राइवर कार के अंदर बैठा हुआ होता है, जो उसको ड्राइव करता है, वो उसको कंट्रोल कर सकता है, है ना। किसी भी अगर सवारी में हम देखें तो क्या होता है कि जो उसके, अब ऐसा नहीं होता कि आप बाहर खड़े हो और उसको कार को कंट्रोल कर रहे हो या एरोप्लेन को या ट्रेन को कंट्रोल कर रहे हो, नहीं, उस आपको अंदर बैठना पड़ेगा और उसके इंजन को, उसके स्टेयरिंग को पकड़ना होगा और ब्रेक को दबाना होगा, तभी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो कुंती महारानी भगवान को कह रही हैं, अथ विश्वेश विश्वात्मन, क्योंकि आप विश्व की आत्मा हो, हृदय के अंदर आप ही विराजमान हो, तो जिस प्रकार कोई भी यंत्र को उसके अंदर बैठने वाला कंट्रोल करता है, उसी प्रकार हे भगवान आप इस विश्व के अंदर हो और हमारे हृदय के भी अंदर हो, इसलिए आप हमें हमारे हृदय के अंदर जो स्नेह है, जो भौतिक वस्तुओं की ओर या भौतिक व्यक्तियों की ओर है, उसको केवल आप ही कंट्रोल कर सकते हो। विश्व मूर्ति, संपूर्ण सृष्टि आपसे रिलेटेड है, विश्व रूप आप हैं, तो यदि किसी वस्तु को हम आपसे पृथक करके प्रेम करते हैं तो वो हमारे दुख का कारण बनता है। वास्तव में जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और आत्मा को भगवान का अंश समझते हैं, और भगवान का अंश समझकर अगर किसी से स्नेह करते हैं कि भगवान मतलब सेंट्रल पॉइंट यदि कृष्ण होता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जब हम अपने आप को या देह मानकर देह के साथ संबंधित व्यक्तियों में आसक्ति रखते हैं। तो यहाँ पर ये कुंती महारानी कह रही हैं, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशम मे मम सिंधि दृढ़ पांडुषु विश्वेशु। अनुवाद, अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा, विश्वरूप आप कृपया मेरे स्वजनों, पांडवों तथा ऋषियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट दीजिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में शर्माता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ वर मांगने पड़ते हैं, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह के ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थी, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों, पांडवों तथा ऋषियों के प्रेम पाश को काट दें। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वैसे भक्त तो अपने लिए भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं है, परंतु क्योंकि ग्रस्त ही होते हैं तो हमारा संबंध होता है अपने बच्चों से, अपने परिवार से, तो अक्सर मजबूरन भगवान से मांगना पड़ता है कि उनको, उनकी तबीयत से किसी की खराब हो जाती है, फिर उसके लिए प्रेयर करना पड़ता है, या फिर किसी की नौकरी नहीं लगती है, या फिर बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, कुछ भी होता है तो फिर प्रार्थना करनी पड़ती है ना। तो भगवान, इसी कुंती महारानी कहती कि क्योंकि ये सब आपके और मेरे बीच प्रेम के बीच में दीवार बन रहे हैं। वास्तव में प्रेमी का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपसे कुछ मांगती फिर हूँ। प्रेमी का मतलब ये होता है कि मैं कैसे आपको संतुष्ट करूँ, परंतु सदैव उनके लिए मुझे आपसे याचना करनी पड़ती है। इसलिए पांडवों में और ऋषियों में जो मेरा स्नेह है उसको काट दीजिए। पांडव उनके निजी पुत्र हैं और ऋषि उनके पितृकुल के सदस्य हैं। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों के भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती महारानी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहें, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग लाभ से वंचित रह जाते। यह पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था। अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपने भक्ति कार्य का विस्तार करता है। इसके जीवन उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्हें भगवान श्री चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत ही प्रबुद्ध एवं संस्कृत धनी स्वर्ण जातियों के थे, लेकिन जनता के कल्याण के लिए वे अपने अपने सुखद घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए थे। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, ना राजा, ना जनता के नेता, ना ही भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में यह दृष्टांत प्रस्तुत किया। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रियतमा से स्नेह बंधन छिन्न कर दिया। ब्राह्मण भक्त राजा या जननेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को छिन्न करने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी शक्तिमय क्षमता को बताने वाला है। इसलिए कभी कभी अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्णतः आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। वास्तव में भक्तों, जो देह के संबंध होते हैं वो अक्सर हम अगर उनकी ओर आकर्षित होते हैं, बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, तो कृष्ण भक्ति में कृष्ण प्रेम में सबसे बड़े बाधक वही होते हैं, है ना। जैसे अगर कोई भक्त बनता है तो बाहर वाले लोग कुछ नहीं कहेंगे, है ना। जो बाहर के होंगे, हमारे रिलेटिव नहीं होंगे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में आता है तो घर वाले का फौरन से दिमाग फटने लगता है कि ये क्या हो गया, अभी क्या तुम रोज मंदिर जाओगे, हफ्ते में कभी कभी जाओ, सुबह को मंगला आरती, फिर संध्या आरती, सोलह माला जप, लहसुन प्याज नहीं खाओगे, दिमाग चट हो गया तुम्हारा। मतलब अपने भले ही वो स्नेह कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी हमें भक्ति में आगे, अगर वो भक्त नहीं है तो फिर वो हमें भक्ति में आगे होता हुआ देखकर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो यदि मतलब भगवान से पृथक किसी का स्नेह होता है परिवार के लोगों में, तो वो सदैव हमारी भक्ति में बाधा बनते हैं। लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी कहती है कि मेरे पुत्र और पांडव और विष्णु, वो उन दोनों से मेरा बहुत ज्यादा स्नेह है जो आपके प्रति प्रेम को पूरा करने में हमेशा बाधा बन रहा है। कोई है ऐसी माँ जो भगवान से यही वर मांगे कि भगवान आप मेरे पुत्रों से मेरी ममता हटा दीजिए, और वो पुत्र भी कैसा, अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे। क्योंकि यहाँ पर कुंती महारानी बता रही हैं कि देह का संबंध जो होता है, अगर हम देह में आसक्त होते हैं या देह के किसी भी संबंधी से आसक्त होते हैं, तो वो हमारी भक्ति के दरमियान अवश्य भेद अवश्य बाधा बनता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि षड गोस्वामी के परिवार के लोगों से उन्होंने अपना स्नेह तोड़ा और महाप्रभु की सेवा के लिए वो वनों में गए और प्रचार किया और भगवान के पवित्र नाम का जप किया। अगर उनका स्नेह अपने परिवार लोगों के साथ या फिर अपने यशो इशरत के साथ होता, तो कभी भी भगवान की भक्ति में इतना आगे नहीं बढ़ सके। तो यहाँ पर कहने का कारण ये है कि कुंती महारानी क्या समझ रही है कि मेरा स्नेह मेरे पुत्रों के प्रति है या मेरे परिवार मेहर वालों के प्रति है, ये कृष्ण का उनके साथ संबंध नहीं देख रही है। फिर आगे जाके कुंती महारानी श्लोक नंबर 43 में अवश्य इस अपनी इस भूल को सुधारेंगी, क्योंकि अगर संबंध संबंधी जो है वो कृष्ण का रिलेटिव है या कृष्ण से संबंधित है, तो वो कभी भी हमारे लिए बाधा नहीं बनता। जैसे अब यहाँ पर जितने भी कहीं भागवत कथा होती है या हम यहाँ पर भागवत कथा कर रहे हैं, कितने सारे लोग के साथ हमारा संबंध है, स्नेह है, वो इसलिए नहीं है, मैं आप लोगों को नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन एक ही ग्रुप में आकर हम रोजाना भागवत कथा सुनते हैं, तो ये स्वतंत्र संबंध नहीं है, देह का संबंध नहीं है। ये प्रेम किसका है? कृष्ण के कारण है, कृष्ण की कथा के कारण है, भागवत के कारण है। तो ये संबंध जो है वो भाग्य वाली भाग्यशाली लोगों को मिलता है। ये इतने सारे भक्त जो हम जुटे हैं यहाँ पर, देह के कारण नहीं जुटे हैं, कृष्ण के संबंध के कारण यहाँ पर जुटे हैं हम। तो ये वास्तव में वो संबंध है जो कि हमें भगवान के प्रति हमारी भूली हुई जो विस्मृत की हुई जो बात है कि हम भगवान का अंश है, उसको याद कराता है। लेकिन जो देह के संबंध होते हैं, जिनका कृष्ण से संबंध नहीं होता है, वो तो फिर हमारे लिए भक्ति में बाधा बनते हैं। लेकिन यदि सेंट्रल पॉइंट कृष्ण है, तो फिर कृष्ण के को केंद्रित करके यदि हमारा किसी के साथ संबंध है, जैसे गुरु, गुरु से हम क्यों संबंधित हैं? गुरु से हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है, लेकिन कितना प्रेम होता है शिष्य का गुरु के साथ, वो क्यों होता है? क्योंकि गुरु का संबंध कृष्ण से है और उनके द्वारा हम कृष्ण के साथ संबंधित होते हैं। तो सेंट्रल पॉइंट क्या है? कृष्ण। यदि कोई गुरु आपको कृष्ण तक नहीं लेकर जाता है, तो उस गुरु के साथ आपका कोई संबंध जो आपके लिए कभी भी हितकर नहीं रह सकता। आजकल हम देखते हैं कोई कोई गुरु लोग होते हैं, वो अपने शिष्यों से केवल अपनी भक्ति करवाते हैं, कृष्ण तक नहीं ले जाते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे गुरु के शिष्य बनने का। यानी किसी के साथ भी आप संबंध रखते हो, तो आपका वास्तविक सेंट्रल पॉइंट जो है वो कृष्ण होना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं हमें कि भाई हम तो साईं बाबा के भक्त हैं, अगर उनसे पूछो कि भाई आप साईं बाबा के भक्त क्यों हो, तो वो है ना अपने बेटे को केंद्र करके बताएंगे, क्योंकि उनकी कृपा से मुझे ये बेटा मिला, उनकी कृपा से मुझे धन मिला, मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली, बंगलो मिला। तो आपने सेंट्रल पॉइंट किसको बनाया है, उस बेटे को या धन को या बंगलो को या गाड़ी को? यदि वो नहीं है तो साईं बाबा भगवान नहीं है, अगर वो मिला है तो वो भगवान है। इस संसार में देखो, हर कोई अपनी मर्जी का एक भगवान बनाता है। क्यों बना रहा है? क्योंकि उससे आपको ये वस्तु मिलती है। लेकिन भगवान बनाया नहीं जाता है, भगवान तो वो है, आपको उनको पहचानना है। भगवान ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कोई वस्तु दे दी या किसी कोई चीज आपकी कोई विश पूरी कर दी तो वो भगवान है। नहीं, भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। ये सारे शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं, भगवान कहते हैं मत के मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय। चाहे बड़े से बड़ा देवी हो, देवता हो, कुछ भी हो, मुझसे श्रेष्ठ कभी कोई हो ही नहीं सकता। और भागवत कहती है, एते चंस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब जो कुछ है, देवी है, देवता है, ब्रह्मा है, शिव है, रुद्र है, विष्णु तक, ये सब भगवान के अंश और कलाएं हैं। परंतु वास्तव में भगवान यदि कोई है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। तो यदि कृष्ण को केंद्रित करके किसी के साथ कोई संबंध है तो वो बुरा नहीं, लेकिन यदि कृष्ण से अलग रहकर किसी के साथ संबंध है तो वो आपके इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपसे बाधा बनेगा। तो यदि हमारा माता के साथ संबंध है तो क्यों है? क्योंकि कृष्ण ने हमें ये माता दी है, तो हमें उसका आदर करना चाहिए। पिता के साथ क्यों संबंध है? क्योंकि कृष्ण ने इस व्यक्ति को मेरा पिता बनाया है, तो ये मेरी ड्यूटीज हैं कि मैं इस व्यक्ति के साथ उनका आदर करूं, उनका सम्मान करूं। कृष्ण ने इस व्यक्ति को मेरा पति बनाया है, तो ये मेरी ये जो नियत कर्म होते हैं वो कृष्ण ने हमें हमारे लिए ये सारी ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की हैं, इसलिए हमें पूरी करनी है। लेकिन यदि कृष्ण से संबंध हटा के कोई ये सोचता है कि ये ड्यूटीज जो है उनको ही पालना मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो वो केवल और केवल जानवरों की तरह जी रहा है। जैसे जानवरों को नहीं पता होता है कि हम अपने बच्चों को क्यों पाल रहे हैं, हम क्यों घर बना रहे हैं, कुछ नहीं पता होता है, वो जी रहे होते हैं। लेकिन यदि शास्त्र को मनुष्य भी नहीं समझ रहा है, कृष्ण के साथ संबंधित नहीं कर रहा है, तो वो केवल और केवल अपने जीवन को व्यर्थ जाया कर रहा है। अब इसी बात को नेक्स्ट श्लोक में कुंती महारानी क्लियर करती हैं। अब देखो, कुंती महारानी ने कृष्ण को कहा, स्नेह पाशम में मम सिंधि दृढ़ पांडुषु ऋषिषु। आप पांडवों से और ऋषियों से मेरा ये स्नेह का पाश है वो तोड़ दो। तो कृष्ण पूछे कि बुआ, मैं भी तो यादव हूँ, मैं भी तो ऋषि वंशी हूँ, तो क्या हमसे भी स्नेह दूर करना चाहती हो? आप ये चाहती हो कि हमसे जो आपका स्नेह है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि मैं भी तो आपका नेहर वाला हूँ। तब भी कुंती महारानी कहती है, नहीं, ऐसे नहीं चाहती हूँ मैं, आप में तो हमारा प्रेम और भी अधिक से अधिक बढ़ता रहे। अन्यों से प्रेम इसीलिए तो खत्म करना चाहती हूँ ताकि वो पूरी की पूरी मति, पूरा का पूरा प्रेम आपको समर्पित कर सकूं। इसे कुंती महारानी कहती हैं, तो इमे नन्य विषया मतिर मधुपते सकृत, त्वई मे नन्य विषया, अर्थात कि अनन्य आपके अतिरिक्त, त्वई मतलब आप में, मैं मतलब मेरा, अनन्य विषय अनन्य भाव से आपके अंदर मेरा प्रेम जो है वो दृढ़ हो जाए। मतलब आपके अतिरिक्त अन्य विषय या व्यक्ति में मेरी मति लगे ही नहीं। त्वई में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत, हे मधु के स्वामी मधुपते, आपके अंदर मेरा ध्यान, मेरी मति अनन्य मतलब दूसरे समस्त विषयों से हटकर आपकी ओर लगी रहे, इसीलिए तो मैं दूसरों का प्रेम खत्म करने के लिए कह रही हूँ। रति उद्वहतात, यानी कि क्षण क्षण में बढ़ना, बहुत ज्यादा बढ़ना। रति मतलब आपके प्रति जो मेरा आकर्षण है वो एक एक क्षण में और भी अधिक बढ़ता जाए। और कैसे बढ़े? अद्धा, अद्धा मतलब प्रत्यक्ष रीति से। और यहाँ पर उदाहरण देती हैं, गंगा यानी गंगा नदी है, उनका जो वेग है, उनका जो ओघम है, वो जब वो बहती हैं तो क्षण क्षण उनका वेग जो है वो उदनवत और भी ज्यादा बढ़ता रहता है। जैसे गंगा जून जो आगे समुद्र की ओर बढ़ती है तो उसकी धारा जो है वो भी बढ़ती जाती है। जब गंगोत्री से गंगा नदी आगे निकल रही होती है तो उनकी धारा इतनी ज्यादा तीव्र नहीं होती है, फिर और आगे बढ़ती जाती है। फिर प्रयागराज में आकर यमुना जी से मिलती है, और यमुना जी से मिलने के बाद वो डबल हो जाती है उसकी धारा। और आगे जब जाती है तो सरजू से, और महान अद्भुत से जब उनका मिलाप होता है तो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और कलकत्ता जाते जाते गंगा नदी की धारा और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी कुंती महारानी कहती हैं कि त्वयि मे नन्य विषया मतिर मधुपते सकृत, आपके अंदर मेरी मति इस प्रकार से और अधिक से अधिक आकर्षित हो जाए, अन्य विषय नहीं दूसरे किसी भी वस्तु में मेरी मति नहीं होगी तो पूरा का पूरा प्रेम में आपको दूंगी। तो रतिम उद्वहता दद्धा, और इस तरह से उसके अंदर प्रत्यक्ष रीति से बढ़ती रहे मेरा प्रेम आपके अंदर। गंगे वौघम उदनवता, जिस प्रकार गंगा के प्रवाह जो है वो बढ़ता रहता है। अनुवाद, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर में ना बंट कर आपकी ओर निरंतर बढ़ता है। अगर देखो रास्ते में कोई उनको गंगा नदी को रोक देता, किसी और की ओर भी यदि उसका आकर्षण होता तो फिर वो डायरेक्ट से समुद्र के पास नहीं रहती। इसी प्रकार मेरा क्योंकि आकर्षण अभी थोड़ा पांडवों की ओर है, थोड़ा विष्णुओं की ओर है, तो मैं आपकी ओर इतना अपना आकर्षण केंद्रित नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि अन्य विषयों को हटाकर मेरा पूरा का पूरा आकर्षण जो है वो आप अपनी ओर खींच लीजिए, और आपके प्रति जो मेरा प्रेम है वो प्रतिक्षण वृद्धमान होता रहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि शुद्ध भक्ति की सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब हमारा सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर लगा हो, अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ अन्य किसी से स्नेह का पूर्ण निषेध नहीं होता, ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों न हो उसे अन्य के प्रति स्नेह की भावना रखनी चाहिए क्योंकि यह जीवन का लक्षण है। इच्छा क्रोध लोभ आकर्षण भावना जैसे जीवन लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उद्देश्य को बदलना होता है। इच्छा का कभी निषेध नहीं है लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्र तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। श्रीला प्रभुपाद जी अत्यंत ही प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब तक हम भौतिक वस्तुओं से अपना स्नेह तोड़ेंगे नहीं तब तक हम भगवान के प्रेम को विकसित नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हमारे जीवन के लक्षण है अर्थात इच्छा क्रोध लोभ आकर्षण, इन भावनाओं को जब तक जीव मनुष्य इस संसार में जिंदा है तो उनको तोड़ने इनको खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ क्या करना है उद्देश्य को बदलना है। इच्छा कभी भी निषेध नहीं है, इच्छा आप करो लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्र तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। इच्छा क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कोई भी इच्छा आप कर सकते हो लेकिन भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, ये जो इच्छा होगी ना वो आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपके लिए बाधा बनेगी। लेकिन भक्ति की इच्छा होगी तो और भी ज्यादा प्रगति करोगे आप भक्ति में। उसी प्रकार परिवार समाज देश आदि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं से बना हुआ है। कुछ लोग अपने परिवार को संतुष्ट करना चाहते हैं, कुछ समाज को, कुछ देश को, लेकिन वो तथाकथित स्नेह क्यों? क्योंकि कोई खा के प्रसन्न हो रहा है तो कोई खिला के प्रसन्न हो रहा है, लेकिन प्रसन्नता तो इंद्रियों को ही दे रहा है ना। जब इस इच्छा को भगवान की तृप्ति के हेतु बदल दिया जाता है तो यह भक्ति कहलाती है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, तो फिर वो भक्ति हो जाती है। भले आप घर देश का रक्षण कर रहे हो या घर परिवार का पालन कर रहे हो, यदि उसमें केंद्र बिंदु कृष्ण को बनाया जाता है तो समझो भक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन अपने भाइयों तथा संबंधियों से अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवद गीता सुनी तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और वह भगवान की सेवा करने लगा। ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान की मित्रता करके अर्जुन ने भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। अब अगर हम भगवत गीता को शुरू से देखें तो शुरू में अर्जुन ने पक्का मना कर दिया था। अर्जुन ने भगवान को कहा था, न योच्यम इति गोविंदम उक्त्वा तु श्रीं बभूव, अपने हथियार वथियार रख के पीछे बैठ गया, बोला मैं इसे नहीं लड़ाई होगी, मैं नहीं करूंगा। फिर भगवान ने उसको पूरी भगवत गीता बताई, फिर बोला अब तुम्हारा क्या इरादा है, जैसी तुम्हारी मर्जी है वैसा करो, या तिच्छसि तथा करो। तब अर्जुन ने कहा कि अब नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादाद् मया च्युतः, अब तो मेरा मोह खत्म हो गया है, स्मृति वापस से प्राप्त हो गई है, अब क्या करूंगा, करिष्ये वचनम तव, अब मैं अपनी इच्छा पूर्ति नहीं करूंगा बल्कि जो आपने मुझे बोला है उसी आज्ञा का पालन करूंगा। तो वास्तव में ये होती है भक्ति कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य ना करें बल्कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करें। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि युद्ध मित्रता अर्जुन तथा कृष्ण प्रेम भी अपने अपने स्थान पर थे, लेकिन भक्ति के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसा ही परिवर्तन सूचित करती हैं। श्रीमती कुंती एकांत भाव से भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति यानी निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। अनन्य मतलब कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। ज्ञान कर्माधीनावश्यकम्, ना ज्ञान की कोई इच्छा है ना ही कर्म की, केवल तुम्हारी भक्ति करना चाहती हूँ, केवल तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। सामान्यतः हमारा ध्यान ऐसी वस्तुओं की सेवा की ओर आकर्षित किया जाता है जो अनिश्वरीय होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती। जब यह योजना भगवान की सेवा में बदल दी जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तो यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी सिद्धि की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। भौतिक वस्तुएं जो हमारे इस संसार में हैं, केंद्रित जो हमारे भाव को केंद्रित करती हैं, तो क्या होता है, भगवान से हम दूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त जो होता है वो सदैव भगवान से रिलेटेड वस्तुओं और व्यक्तियों में ही केवल अपना आकर्षण रखता है, ताकि वो भगवान से और भी अधिक स्नेह को बढ़ा सके। पांडवों तथा ऋषियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि अब कुंती महारानी अगर पांडवों से भी प्रेम कर रही है या ऋषियों से भी प्रेम कर रही है, तो भक्ति की परिधि से बाहर कहाँ है, क्योंकि पांडव किससे रिलेटेड है, कृष्ण से रिलेटेड है, और ऋषि किससे रिलेटेड है, वो सारे जो यदुवंशी हैं वो भी भगवान से रिलेटेड हैं, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। अब कृष्ण का दोस्त है अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज, ये सब कृष्ण के स्नेही हैं, वसुदेव कृष्ण के पिता हैं और सारे यदुवंशी कृष्ण से रिलेटेड हैं, तो उनकी उनसे यदि स्नेह है, यानी भगवान के साथ स्नेह हो या भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ स्नेह हो, वो अलग नहीं है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा ऋषियों के लिए कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। अब यहाँ पर कुंती महारानी क्या सोच रही हैं कि इनसे तो मेरा संबंध है ना, क्योंकि देह का मेरा ब्लड रिलेशन है, इसीलिए मैं इनके बारे में सोच रही हूँ। वो केंद्रित नहीं कर रही है कृष्ण को, तो इसलिए वो कह रही है कि ये स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण है। भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध है। ये भौतिक जितने भी संबंध हैं वो माया का संबंध है, क्योंकि शरीर या मन के संबंधी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। ये जो माया है उसी के द्वारा ये जो भौतिक वस्तुओं या व्यक्तियों में हमारा प्रेम बढ़ता है। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध वास्तविक संबंध होते हैं। अगर भगवान के साथ रिलेशन बना के किसी के साथ यदि हम संबंध जोड़ते हैं तो वो आत्मा का संबंध उस टाइम पर। अभी यहाँ पर क्या होता है, कोई कोई भक्त लोग भी है ना ऐसे करेंगे कि भाई भक्तों के साथ भी हमें प्रेम करना चाहिए, लेकिन भक्तों के साथ प्रेम इस तरह से, ये फिर बात जब आती है तो फिर वापस से देह को हम केंद्रित कर रहे होते हैं। लेकिन वास्तव में प्रेम आत्मा का, आत्मा को स्नेह, जैसे भक्तों का प्रेम भौतिक भौतिक भक्त उसके शरीर से प्रेम नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि हमारा उसकी आत्मा से स्नेह होता है, क्योंकि वो आत्मा भगवान से स्नेह कर रही होती है। यानी कि संबंध किसके साथ जोड़ना है, किसी भी भक्त का तो, भक्त का तो संग किया जाता है, भौतिक शरीर का तो संग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका संबंध भगवान के साथ है। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि भाई वो भगवान का भक्त है तो उससे प्यार करना शुरू कर दें और फिर उसकी देह की ओर आकर्षित हो जाए, लेकिन मतलब अगर आप भक्ति में आते हो तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि माता जी और प्रभु लोग में ऐसे स्नेह का चक्कर कर भाई हम तो भगवान से रिलेटेड हैं इसलिए हम प्रेम कर रहे हैं, नहीं ऐसा कभी भी नहीं होता है। भक्त का स्नेह का केंद्र जो है वो हमेशा कृष्ण होना चाहिए। इसी बात को यहाँ श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने वाले आत्मा के संबंधित वास्तव में संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने के अभिप्राय ये था कि वे रक्त के बंधन को छिन्न करना चाह रही हैं। यह रक्त संबंध भव बंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा का यह संबंध परमात्मा के संबंध के माध्यम से स्थापित किया जाता है। अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो वो हमारे बंधन का कारण बनता है, लेकिन क्योंकि जैसे गुरु होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो भगवान से संबंधित होते हैं, इसीलिए जो हमारा उनके प्रति स्नेह है वो भगवान के स्नेह से अभिन्न है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो हमें भगवान का स्नेह प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से संबंध के माध्यम, ये परमात्मा के संबंध के माध्यम से स्थापित किया जाता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को तथा अंधकार में जो नहीं दिख रहा है उसे भी देखना, यही भक्ति योग का मार्ग है। अंधेरे मतलब अज्ञान, जब हमारे हृदय में अज्ञान होता है कि ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा रिलेटिव है, इससे मुझे स्नेह करना है, तो शास्त्र तो कहता है समुद्र के तट पर रेत के उतने कण नहीं जितने तुम्हारे माता पिता हो चुके हैं, जितने तुम्हारे पति पत्नियां हो चुकी हैं, जितने तुम्हारी संतानें हो चुकी हैं। 84 लाख योनियों को पार करके जब तुम इस मनुष्य जन्म में आए हो तो न जाने कितने कुत्ते, सुअर, बिल्ली सबके साथ संबंध जोड़ा होगा पिछले जन्मों में। अगर देह के संबंध को याद करोगे तब तो तुम कर्म बंधन से कभी छूट ही नहीं सकोगे। इसलिए क्या करना है, सूर्य प्रकाश में देखना, यानी ज्ञान की आंखों से देखना है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, यह शरीर नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, मेरा केवल संबंध कृष्ण के साथ है और ये जो सारी ड्यूटीज मुझे कृष्ण ने दी हैं वो मुझे इसलिए अपने नियत कर्म पूरे करने हैं क्योंकि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को तथा अंधकार में जो नहीं दिख रहा था उसको भी देखना, यही भक्ति योग का मार्ग है। और अपनी इसी भूल को स्वीकार करते हुए कुंती महारानी कहती हैं, श्री कृष्ण कृष्ण सख वेश्या ऋषभावनिद्र, श्री कृष्ण कृष्ण सख, आप कृष्ण हो, आप कृष्ण के सखा हो। कृष्ण सखा मतलब अर्जुन के सखा हो। अब आप अर्जुन क्योंकि आपका मित्र है इसीलिए मेरे स्नेह का यदि केंद्र है तो आपसे रिलेटेड होकर अभी मुझे अर्जुन को नहीं छोड़ना है क्योंकि अर्जुन तो आपका कितना प्रिय मित्र है। हे श्री कृष्ण अर्जुन के सखा, और अर्जुन जो है वो भगवान का इतना घनिष्ठ मित्र था, जब अर्जुन सोता था तो शास्त्र में महाभारत में लिखा हुआ है सोते वक्त अर्जुन के प्रत्येक अंग से कृष्ण 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 ऐसे निकलता था, मुख बंद होता था लेकिन उनके एक एक अंग से कृष्ण का नाम निकलता था। और अगर हम महाभारत में कैलकुलेशन करें, अगर हम देखें तो ज्यादा समय कृष्ण ने अर्जुन के साथ बिताया, अर्जुन का सारा समय कृष्ण के साथ ही बीतता था हमेशा। वो अगर या तो कृष्ण जो है वो हस्तिनापुर आते थे तो अर्जुन सदैव उनके साथ होते थे, रात को सोते वक्त भी एक ही पलंग पे सोते थे और साथ में खाते थे, साथ में ही घूमने जाते थे। और फिर जब भगवान चले जाते थे ना द्वारिका, तब है ना युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बोलते थे कि कृष्ण को अकेले नहीं जाने देते, आप जाओ कृष्ण के साथ जाओ। और फिर जब अर्जुन कृष्ण के साथ जाते थे द्वारिका तो वहीं रह जाते थे, वापस नहीं जाते थे, हस्तिनापुर जाते ही नहीं थे। फिर जब बहुत सारे दिन हो जाते थे फिर अर्जुन कृष्ण को बोलते थे चलो ना हस्तिनापुर चलते हैं, फिर वापस वो दोनों आते थे, यानी कि जिधर भी जाना होता था ना दोनों साथ ही होते थे। तो यहाँ पर कुंती महारानी कहती हैं, श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णु ऋष भाव नेत्री, ऋष भावन यानी ऋषि कुल जो है ऋषभ, ऋषि जो कुल है ऋषभ, हे प्रमुख अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी पर ध्रुक यानी विल विप्लवी, यानी कि ये जो ऋषि का जो सारा कुल है वो मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि उस कुल में आपने अवतार लिया है, और अर्जुन मुझे इसलिए प्रिय है उनसे तो मुझे इन दोनों से स्नेह तो जरूर करना चाहिए, लेकिन ये मेरे ब्लड रिलेशन है इसलिए नहीं, बल्कि अर्जुन से इसलिए क्योंकि कृष्ण सख, अर्जुन का एक नाम है कृष्ण, और कृष्ण के आप कृष्ण हो और कृष्ण के सखा हो, और जितने भी ऋषि यदुवंशी हैं उनसे भी आप संबंधित हो। यहाँ पर कुंती महारानी भगवान के अलग अलग नामों से भगवान को संबोधित करते हुए कहती हैं, राजन्य वंश दहनाप नपवर्ग वीर्य, राजन्य अर्थात राजन्य वंश जो राजाओं के वंश हैं, दहन हे विनाश करता यानी कि जो भी आपने सारे राजाओं का विनाश करवाया है, अनपवर्ग यानी बिना विनती के, वीर्य पराक्रम दिखाया, गोविंद गोद्विजसरा, गोविंद जो है वो भगवान का मुख्य नाम है। बहुत सारे यहाँ पर भगवान के नाम गिनाए हैं लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम जो है वो गोविंद है, क्योंकि ये कृष्ण का वो नाम है जिसे हम कृष्ण का, इसका मतलब होता है, गो का मतलब होता है इंद्रिया, और विंद का मतलब होता है स्वामी, उनको प्रसन्न करने वाला, जो इंद्रियों को प्रसन्न कर सकता है। अर्थात ये मनुष्य जो है हमेशा जीव क्या सोचता है कि अपने संबंधियों से, उन भौतिक वस्तुओं या व्यक्तियों से संबंधित होकर अपने आप को मैं संतुष्ट करने की चेष्टा करता हूँ। भक्ति तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है, तो भक्ति मतलब दुखी होकर जैसे तैसे करके अपनी माला पूरी कर रहा हूँ, लेकिन आनंद मुझे किससे आएगा, भौतिक वस्तुओं से आएगा, ये करूंगा एंजॉय करूंगा घूमूंगा फिरूंगा खाऊंगा इससे मुझे आनंद आएगा, लेकिन भक्ति तो मैं बस ऐसे ही करनी है मनुष्य बनाओ तो, वरना तो बोलेंगे कि मनुष्यों में और जानवरों में खाली यही फर्क है कि हम भक्ति करें इसलिए कर रहा हूँ बाकी आनंद नहीं। लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी बता रही है ऐसा नहीं है, वास्तव में आपको तब तक आनंद आ नहीं सकता है जब तक आप भगवान को खुश ना करो। ये स्वयं को खुश करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है, स्वयं को आप अपनी इंद्रिय, क्योंकि आप इंद्रिय हो नहीं ना, भौतिक वस्तुओं से आप अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की चेष्टा कर सकते हो लेकिन इंद्रियां भी संतुष्ट होंगी नहीं, क्योंकि इंद्रियों को खुद अपनी इच्छा नहीं होती है, वो आत्मा इसके अंदर है वो संतुष्ट होना चाह रही है, तो हम आत्मा को संतुष्ट करने की बदले में क्या कर रहे हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करने का कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उससे वो खुशी तो हो ही नहीं रही है। तो फिर गोविंद कहकर बोल रही है क्योंकि मैं आपको प्रसन्न करूंगी तो फिर इनडायरेक्टली मैं अपने आप को प्रसन्न कर सकूंगी। केवल अपने आप को संतुष्ट करने का, सुखी करने का एक ही तरीका है कि हम भगवान को खुश करें। और आप इस संसार में आते हो गोद जसुरा तिहारा अवतार, क्यों आप लेते हो गो यानी गौ को, द्विज यानी ब्राह्मणों को, सुरा यानी देवताओं के, इन सबको संतुष्ट करने के लिए, अतिहा उनके दुख को हरण करने के लिए, आरती हरा यानी उनके जो दुख हैं उनको दूर करने के लिए आप इस संसार में अवतार लेते हो। योगेश्वरा अखिल गुरु भगवान नमस्ते, योगेश्वरा हे योगियों के स्वामी यानी समस्त जीवों के पूजनीय आप हो। आप ये मत सोचना कि मैं तो आपकी बुआ हूँ, मैं क्यों आपको नमस्कार कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, आप योगेश्वर हो, खील गुरु, समस्त जीवों के आप गुरु हो। पूरी ये सृष्टि है वो आपके आदेश अनुसार कार्य कर रही है, इसलिए भगवान नमस्ते। ये समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी आप भगवान हो, आप सबसे ज्यादा सुंदर हो, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, सबसे ज्यादा शक्तिवान हो, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान हो, सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, इसलिए मैं आपको अपना प्रणाम पेश करती हूँ। अर्थात कुंती महारानी कह रही, अनुवाद, हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन मित्र, हे विष्णु कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों के ध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी हटता नहीं, घटता नहीं। आप परम धाम के स्वामी हैं और गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक यानी गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय हो। शीला प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य धाम है जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। उनकी सेवा में लाखों लक्ष्मियां रहती हैं। वे समस्त जगत में अपने भक्तों को उभारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन पालन तथा संहार करते हैं, फिर भी वे सदैव शौर्य के पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भागवत भक्तों पर विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कारक हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि कुंती महारानी कह रही हैं कि आप गौलोक के स्वामी हैं। आपको इस भौतिक सृष्टि में किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि आप अपने भक्तों को, ब्राह्मणों को, गौ को, उनकी रक्षा करने के लिए और जो बहुत ज्यादा राजा उपद्रव करते हैं और आपके भक्तों को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आप इस संसार में आते हैं। लेकिन आपका एक वास्तविक धाम है जहाँ पे आप सुरभि गवों के साथ आनंद कर रहे होते हैं। और वास्तव में हम भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों से जब आसक्ति मिटाते हैं केवल आपके भक्तों के साथ, जैसे जो आपके से जुड़े हुए हैं, जैसे श्री कृष्ण कृष्ण सखवेश्वर ऋषभ भावन के जो आपके साथ संबंधित हैं, जो आपके सखा हैं, जो आपके भक्त हैं, जो आप से रिलेटेड हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, उनके साथ संबंध जोड़कर हम आपके उस धाम को प्राप्त कर सकते हैं। योगेश्वरा खिल गुरु भगवन नमस्ते, क्योंकि आप समस्त जीवों के गुरु हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्ण।